سے اور تھوڑا سا اوپر چلیے. راستے میں کنکریٹ بنتی ہیں, پتھر کی روڑیاں ہیں, ایک مائل تک اور اتنا اونچا شیر کر دیا چھوٹے چھوٹے پتھر کے پیچھے, اور ایک بار سے ایک پتھر لے کر کے اس میں اسی کے سمان چھوٹے چھوٹا ہے اس کو ملا دیا. تم بات کر سکتے ہو جس کو ایک نمبر بڑھا کے نہیں بڑھا بڑھ گیا نا, مل کر کے ایک ہو گیا کیا؟ کنتو اس کو ایسا کرو لال رنگ سے رنگ دو اور اس میں ملا دو تو کیا ہوگا؟
آسانی سے نکل آئے گا.
نکل آئے گا. اچھا اور تھوڑا سا آگے چلو. ایک کلاس میں ایک 100 لڑکے ہیں اور ایک نیا لڑکا پڑھنے کے لیے اس کو بھرتی کر دیا, تو وہ کلاس میں گیا نا, اب کتنے لڑکے ہو گئے؟ 1000 لڑکے تھے, ایک اور مل گیا تو کتنا ہو گیا؟ 1000 ایک ہو گیا نا, مل تو گیا کنتو برابر ہو رہا ہے نا, بلکہ بڑھ گیا.
بڑھ گیا
کلاس تو وہی رہا, کلاس سکس رہا یا تھری رہا, کنتو ایک لڑکا بڑھ گیا. وہ ملنے سے وہ بچوں میں مل کر کے ایک ہو گیا, ایسا نہیں. جب یہ کلاس ایک کلاس نا, کلاس کس کو کہتے ہیں؟ 100 بچے ہوں یا جتنے بھی 10, 20, 50 ہوں, اس میں ٹیبل بینچ ہو, ایک ماسٹر کے لیے چیئر الگ ہو, ماسٹر رہے گا, بورڈ رہے گا, اس کو ڈسٹر رہے گا,
پینسل رہے گا, بلیک بورڈ رہے گا,
یہ سب رہے گا, پانی پلانے والے ایک نوکر یا نوکرانی رہے گی, یہ سب مل کر کے سب ایک کلاس ہوتا ہے. یہاں پر ہم کتنے آدمی ہیں؟ ایک آدمی اور آیا, اس میں مل گیا, تو اس میں ہم لوگوں کا اندر میں گھس گیا, شریر کے اندر نہیں وہ الگ رہا. ایسے بھگوان میں جو جیو مکت ہو کر ملتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں جیسے ایک آدمی ملتا ہے, کنتو ان کی سنکھیا بڑھ جائے گی, سنکھیا کم جائے گی, ایک نہیں ہوں گے, ایک نہیں کبھی نہیں, کوئی نہیں. دودھ میں دودھ نہیں ملے گا, اس کے الگ الگ کان ہوتے ہیں, پارٹیکلس ہوتے ہیں. دودھ میں دودھ ملاؤ تو ایک ہو جائے گا. یہ گائے کے دودھ میں بھیڑ کا دودھ ملا دو, مل تو گیا, ایک ہوگا. گائے کے دودھ میں گائے کا دودھ بھی جو اڑو پرمانو ہیں وہ ایک ہوں گے, اس لیے کبھی بھی کوئی چیز میں کوئی چیز مل کر کے ایک نہیں ہوگی, اس لیے برہم مل کر کے ہم ایک نہیں ہوں گے. اس چیز کو سمجھ لیے کوئی بھی غلط, ہم جی ہی جیو رہیں گے, بھگوان کی سیوا کو پائیں گے, اس کا نام بھکتی ہے. اور وہی بات سنیاسیوں میں ہم نے یہی سمجھا, ایک جیواتما پرماتما کو
ایک مانتے,
تو جیواتما الگ اور پرماتما الگ نام کیوں ہوا؟ گیتا میں کہتے ہیں میں سب سے شریش ہوں, ایسا کہنے کا ضرورت کیا؟ تم سبھی لوگ ہمارے کو سمرپن کو یہ شرناگت ہو, یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ برہم برہم کا شرناگت ہوگا. آپ دو برہم ہیں کہ ایک ہی برہم ہے؟ ایک ہی, تو ہم جیواتما کے ساتھ ہیں. اس لیے بھکتی شریشٹھ ہے, بھکتی کرنا, بھکتی مانے سیوا, بھگوان کی ہم سیوا کریں مکت ہو کر کے, برہم میں مل کر کے ایک نہیں. یدی کہو جیواتما پرماتما الگ ہے, ٹھیک سمجھ ویوہار کے, کنتو ہے ایک ہی, تو الگ کیوں ہوئے؟ برہم تو سروگ ہے اور نرمل ہے, تو وہ یہ جیو کیوں ہوا, جگت کیوں ہوا, اتنے کیوں ہوئے؟ کیوں ڈفرنس ہے نا, یہ مایا میں بدھ جی کیوں ہوا, بھگوان برہم کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ تو ہے, کنتو برہم کبھی بھی مایا میں نہیں پھنسے گا, کیونکہ مایا کا وہ ادھیشور ہے, ہم مایا کے ادھین ہیں, یہ دونوں میں ڈفرنس ہے. تو وہ جیو برہم کے ساتھ میں کیسے ایک ہوگا؟ ارجن کبھی کرشن بن گیا؟ شنکر جی کبھی مل گئے؟ شنکر جی سخت میں ویسے یہ رادھا جی کرشن مل کر کے کبھی ایک ہوئی؟
نہیں
ایسا نہیں, ادویت کی بات, ادویت نہیں, ادویت कहते हुए भी भेद और अभेद होने पर भेद ही
प्रबल
प्रबल है। भेद नहीं रहेगा तो उसकी सेवा सब समय कैसे करेंगे, प्रेम कैसे होगा? इसलिए भेद अभेद होने पर भी भेद की कोई प्रतीति नहीं है, भेद की ही प्रतीति है। इसी में सेवा और उसके प्रभाव में
श्रीरामस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरक्षिते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानि सुते प्रणमामि हरि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसु। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्ने माम चरणं प्रति। कल हम लोगों ने श्रीमद्भागवत की कथा प्रारंभ की थी। कैसे भागवत का प्रारंभ हुआ? परीक्षित महाराज जी को बच्चे को कर परीक्षित महाराज जी को कैसे अभिसंपात हुआ और गंगा के किनारे पहुंचकर वहां पर खाना पीना छोड़ दिया। 7 दिन तक, 7वें दिन में इनकी मृत्यु होनी है, इसे अब से खाना पीना सोना दूसरों से बात करना ये सभी बंद कर दिया उन्होंने। इसको कहते हैं प्राय उपवेशन। और भारतवर्ष में जितने भी या विश्व में आज जैसा छोटा भारतवर्ष नहीं था, उस समय कास्पियन सागर के पास में हमारे कश्यप ऋषि रहते थे, उसे इसका नाम पड़ा कश्यप से वो अपभ्रंश हो गया। उसी प्रकार से हमारे मंगोल ऋषि मंगोलिया इत्यादि में रहते थे। अभी हम लोगों के देखते देखते बर्मा सिलोन पाकिस्तान ये सब इससे निकल गए। तो उसमें भारतवर्ष बहुत बृहद था, वहां पर कितने हजारों लाखों ऋषि रहते थे, वहां पर उपस्थित थे बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग। उस समय टेलीफोन फ्रैंक कॉल या इस तरह की कोई चीज की जरूरत नहीं थी। उस समय में शब्द विज्ञान इतना उन्नत था, 1 सेकंड के अंदर में सबको मालूम हो गया और ऋषि महर्षि लोग वहां पर सब उपस्थित हो गए। उसी समय में सुखदेव गोस्वामी आए, कल उसकी मैंने अवतारणा की है। तो उस समय में सुखदेव गोस्वामी आए, उन्होंने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, जो अभी मरने के लिए तैयार बैठा है, अभी तुरंत प्राण निकलने वाले हैं, उस व्यक्ति क्या क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? और दूसरा, आज कल परसों वर्षों मरेगा जरूर, उसके लिए क्या कर्तव्य? हमारे सामने भी यही समस्या है, किंतु हम इसको ओवरलुक कर रहे हैं, नहीं समझ रहे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, हाथ उठाए तो, जब मैं नहीं मरूंगा, जरूर मरना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीच में नहीं मर गया तो बूढ़ा नहीं हो जाएगा या बूढ़ी नहीं हो जाएगी? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई रोग ही नहीं हो इसलिए मरना जरूरी है। इसलिए जो अभी तुरंत मरने वाले हैं, तुरंत तो हम बैठे हैं, एक सेकंड की अभी देरी नहीं, उनको क्या करना है? यानी दिन निश्चित हो गया है। परीक्षित महाराज का तो 7 दिन का गारंटी था जिसके बीच में नहीं मरेंगे। हम लोग की कोई गारंटी है? कोई दे सकता है गारंटी? कोई गारंटी नहीं, जरूर मरना पड़ेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, जो 7 दिन के बाद में या वर्षों तरसों मरेंगे उनके लिए क्या करना चाहिए, और जो अभी तुरंत मरने के बैठे हैं उनको लिए क्या करना चाहिए? अब आप ही लोग विचार करके देखिए क्या करेंगे। एक छोटी सी लौकिक कहानी सुना देता तो अब आप लोग समझेंगे इस विषय में। कोई एक वैष्णव हमारे ही जैसे थे, वो किसी राजा के पास में, धनी के पास में गए और उनके संतरियों को उन्होंने कहा, जिसे मैं राजा से 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए राजा से इसे कह करके या ऑर्डर ले आओ, मैं उनसे मिलूँ। राजा ने देखा जैसे ये तो जरूर भीख मांगेगा, कुछ मांगने के लिए आया होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि आज समय नहीं है, कल परसों आने के लिए कहना। वो लौट गए, परसों आए ठीक समय पर, फिर खबर दिया, उन्होंने कहा जैसे अभी समय नहीं है, बहुत मेरे काम है, कह देना जैसे 2 दिन के बाद में आए, ये भी छोड़ने वाले नहीं थे, फिर आए। उन्होंने कहा जैसे वो रोज आता है, कह दो अभी समय नहीं है, जब समय होगा तो मैं देखू। चले गए और उन्होंने जाकर के उनके राज घर में गए और किसी को खबर दिया, महारानी से कह दो जैसे एक साथ कोई साधु आया है, उनसे मिलना चाहता है। स्त्रियां कुछ कोमल स्वभाव की होती हैं, अच्छा जाओ बुला लाओ। जब आए तो उनको अच्छी तरह से बैठाया, पीछे हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए, आपको क्या दूं, क्या सेवा करूं? समझे नहीं, सेवा की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आया था एक काम के लिए, राजा से मिलना था, राजा मिले नहीं, हमको ये बतलाना था कि मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या अब भ्रांत है, कहीं भ्रांत नहीं होगी, इनको 7 दिन के बाद में मरना है। 7 दिन तो हमको आने जाने में लग गया, 15 दिन की आयु में मैं आया था, किंतु अब 7वें दिन इनको जरूर मरना है, कोई रोक नहीं सकता, यह भ्रांत बन। रानी घबरा गई, उन्होंने कहा जिसे जो कुछ करना है 7 दिन के अंदर में कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये क्या करके वो तो चला गया। इन्होंने राजा को बुलाया, राजा भी दौड़ते हुए आए, अब यहाँ पर उनको कल परसों का समय नहीं देना है, अपनी पत्नी है ना, इसलिए नहीं, इसलिए उनको जल्दी से बुलाया, वो आ गए। कहा क्यों हमको जल्दी से बुलाया? तो इसलिए बुलाया जी आपको 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, एक कोई साधु आए थे, वो बड़े भारी ज्योति हैं, वो कह रहे हैं कि जरूर 7वें दिन मरे। तो वो भी घबरा गए, जो कैसा आदमी था, ये सिर पर केस नहीं थे, मुंडन था, छोटी थी मोटी, गले में तुलसी की माला थी और ऐसा लंबा तिलक था, बड़े गौर वर्ण के थे, उम्र 40 वर्ष की थी। ठीक, अपने लोगों को लगा दिया कि खोज करके लाओ, तो कहीं अभी अभी तो थोड़ी देर की बात है, कहीं ना कहीं होगा। खोजते खोजते पास ही गांव के उधर में कहीं नदी थी, उसके किनारे टूटी थी, उसी में भजन कर रहे थे, उनको बुलाया, वो आ गए। आ गए तो उनको सिंहासन पर बैठाया, बड़े आदर जतन के साथ में पूछा, जी महाराज आपने कहा कि आप मेरी मृत्यु होगी, तो जरूर होगी, 7वें दिन जरूर तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो उनको विश्वास तो मैं यहीं पर रहूंगा, यदि नहीं हो तो हमको जो कुछ हो तुम कर देना। महाराज मैं क्या करूं, तुम कुछ करो जो तुम्हारे लिए करना है। महाराज अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि एक बात करो, मैं ज्योतिष विद्या के द्वारा ये भी देखता हूं कि तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहां पर तुम्हारे लिए नंदन कानन और पीने के लिए अमृत और सुंदर सुंदर चीजें वहां पर, जो कि इस विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है, तुम्हारे लिए सब प्रस्तुत हैं। किंतु महाराजा जी एक बात है, वहां पर आजकल जैसे बम्बई में मच्छर हो गए हैं, तो वैसे वहां पर भी कुछ मच्छर हो गए हैं, बड़े बड़े काले काले, काटने के साथ में वहां पर भी मलेरिया हो जाने का डर है, इसलिए वहाँ पर मच्छरदानी भी है किंतु कोने में थोड़ी सी फटी हुई है, उसमें से मच्छर घुस सकते हैं। एक बात कीजिए, यहाँ से सुई और थोड़ा सा धागा ले जाएंगे, वहाँ पर रफ कर देंगे, सिलाई कर देंगे, ठीक हो जाएगा। सुई धागा कैसे मैं ले जाऊँगा, ये शरीर भी तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं जा सकता। तो आपने सारा जीवन कमाया और जो किया बेकार का, ये क्या किया यदि उसमें से एक सुई और धागा भी नहीं ले जा सकते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुई धागा लेकर के जाए मरने के बाद में? कोई कुछ नहीं लेकर के जाएगा, ये हाथ पसार करके जाएगा, शरीर भी आग में जला दिया जाएगा, नहीं जलाएगा कीड़े उसमें से हो जाएगा, और नहीं तो सियाल कुत्ते ये खा करके चक्की करते हैं, यही तो शरीर की अंतिम स्थिति है। तो आप लोग ये समझिए, ये सात दिन की बात की, आपने सारा जीवन भर जो कमाई कर रहे हैं इसमें से क्या चीज आपके साथ में जाएगा, सुई धागा भी नहीं गया तो, इसलिए विचार कीजिए क्या करना है। तो यदि अभी मरने वाला है तो उसके कान में राम राम सुनाओ, कृष्ण कृष्ण सुनाओ, और तुलसी हो और गंगा जल तो उसको अवश्य में गति होगी इसकी। आजकल तो अस्पतालों में आपको समय नहीं मिलेगा, जो उनको नाम सुनाएंगे वो तो वहां पर रखेंगे जहां पर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको समय नहीं आ, उसी बीच में मर गया, कोई भाई बंधु भी वहां पर नहीं जा सकता। ऐसे ही बिना पानी दिए हुए ऐसे ही कराते और बेहोश होते हुए कोमा में मर गए। तो ये कर रहे हैं, देखो यदि एक सेकंड का भी समय है, एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनाम् निर्णितम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारे पूर्व पूर्व जो व्यास नारद ब्रह्मा इत्यादि जी हैं, शंकर जी हैं, इन लोगों ने समस्त शास्त्रों का तात्पर्य दोहन करके सार रूप में कहा। यदि एक मनुष्य अभी मर रहा है उसके कान में बस हरे कृष्ण राम, कलयुग में महामंत्र है ये कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सुनाओ देखो जो उसकी क्या गति होती है। आप लोग अपनी आंखों से देखे नहीं है क्या गति, जिनको देखने का वो देखेंगे, समस्त दुखों से सदा के लिए दूर करके भगवान के चरणों को प्राप्त, नित्य काल के लिए सुखी है, ये गारंटी है। ये तब निर्विद्य मानाना, ये गारंटी दे रहे हैं निश्चित रूप में ये सिद्ध है। एक भगवान का नाम है जो अभी तुरंत मरने वाले, वो भगवान की चिंता करते करते मरे, आजकल कहां करेगा वो, अस्पताल में दे दिया, वो तो अंतिम समय में सुख से मर भी नहीं सकता। इसलिए यदि मरना है भगवान का चिंतन करते करते उसके कान में भगवान का नाम सुनाया जाए, बस किसी से उसका कल। और अधिक दिन यदि जीवित है और उसको कभी 5 वर्ष के बाद में, 1 वर्ष के बाद में, 7 दिन के बाद में मरना है तो उसे क्या करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनो। सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रथो सजे अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। इसी के लिए परीक्षित महाराज जी कहे, देखो अब 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, भगवान की कथा सुनो, ये भगवान की भक्ति करनी है। इसमें तुम्हारा कोई भी खजाना राज्य और जो कुछ है तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, छोड़ करके एकमात्र तुमको 7 दिन भगवान की कथाओं लीला कथाओं को सुना रहा हूं, इसमें गारंटी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अवश्य में हो जाएगा। बड़े श्रद्धा के साथ में कथा सुनने लगे। भगवान की कथा ऐसी है यदि थोड़ी सी कथा वो सुनेगा तो संसार की आसक्ति जरूर दूर होगी, उसके हृदय में सांत्वना आएगी, वो एकदम शांत हो जाएगा, संसारिक विषयों के लिए वो अनुताप और शोक और मोह नहीं करेगा, अवश्य में वही चीजें होंगी। उन्होंने कहा जी देखो अब मैं हरि कथा आरंभ कर, ये कह करके उन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सत्यम परम धीमहि ये आरंभ किया, क्या पहले श्लोक जन्मादस्य जतो अन्नयादि तरसस्य अभिज्ञो सरा तेने ब्रह्म हृदाज आद कवे मोहयन्ति जत सूरय तेजो बार निदम जत विनमयो तिसर्गो अमृता धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम सत्यम परम। जो परम सत्य है उसका मैं ध्यान करता हूँ। परम सत्य क्या है? कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। ये ब्रह्म जो कहते हैं उनकी अंग कांति है, परमात्मा जो हमारे हृदय में साक्षी है वह उनका अंश है, ओंकार इत्यादि जो है उनका एक शाब्दिक रूप है, कृष्ण ही स्वयं भगवान। एते चांस कला पुंसा कृष्ण सु भगवान स्वयं, सुखदेव गोस्वामी ने उनको परिचित माना। देखो भ्रम में मत रहो, कृष्ण ही परम तत्व है, इनसे बढ़कर के परम तत्व नहीं है। राम इत्यादि जितने भी अवतार हैं सब इन्हीं से अवतरित होते हैं। राम और कृष्ण और भगवान के अवतार अलग अलग नहीं है। वही कृष्ण ही कभी राम के रूप में, कभी दूसरे अवतारों के रूप में आते हैं। उनकी लीलाओं में कुछ वैशिष्ट्य है किंतु है वही कृष्ण ही। एक चांस कला, जिन अवतारों को 24 अवतारों का नाम दिया हुआ, ये सब कृष्ण के अंश हैं। कोई अंश के कला कोई विकला है, यही समस्त अवतारों में जगत में आते हैं। इसलिए कृष्ण को ही अपना आराध्य मान करके जो व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, कैसे भक्ति करता है? अहेतुक अव्यवहिता, अहेतुक माने बिना किसी कारण के। हम लोगों की प्रीति होती है स्वार्थ के लिए। कैसे प्रीति होती है स्वार्थ के लिए? उपनिषदों में ऐसा एक उपाख्यान आया, महाराज जनक के दरबार में बहुत से ऋषि लोग रहते थे, ब्रह्मवेत्ता इत्यादि। उसमें याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि रहते थे, जो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे याज्ञवल्क्य। उनकी दो पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। वो भी विदेशी पढ़ी लिखी हुई महिलाएं थीं। कैसी महिलाएं पढ़ी लिखी? आजकल करके एमए बीए पढ़ करके मूर्ख बनने वाली नहीं, जो आत्मतत्व का कोई ज्ञान नहीं है, आर्थिक विद्या, भ्रष्ट चरित्र, ऐसा नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो कि हमारे परम तत्व को नहीं जानती, उनके लिए या पुरुषों के लिए नहीं। तो वो बहुत विदेशी महिलाएं थी। इन्होंने कहा अपनी दोनों पत्नियों से, देखो तुम्हारे बाल बच्चे हो गए हैं, रहने के लिए मकान भी मैंने सब व्यवस्था कर दी, हजारों लाखों गायें तुम्हारे लिए रख दिया है। उस समय गोधन ही धन था, यह सब धनों की जरूरत नहीं होती। बाग बगीचे में फल मूल कंद हो रहा है, गायें हैं, दूध देती हैं, उसी का सब कुछ बना करके लोग खाते। बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती थी, शरीर में बल और ओज होता था, स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती थी, धारणा शक्ति वैसे होती थी। अभी तो हम कहेंगे जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ऊर्ध्वमंथी। क्या कहा? ऊर्ध्वमंथी, जरा लिख दीजिए फिर से बोलिए तो ऊर्ध्व, इसके बाद में क्या? ऊर्ध्वमंथी। फिर एक मिनट में भूल गया, नाम डायरी पर नोट कर दिया, फिर याद ही नहीं आएगा। ऐसी तो हमारी भी शक्ति, धारणा की शक्ति नहीं है। ब्रह्मचर्य वैसा नहीं रहा, खाने में कोई अब कोई तत्व ही नहीं रह गया, धीरे धीरे सभी चीज का ह्रास और लोप होता चला गया। तो उनकी पत्नियों से उन्होंने कहा जैसे देखो तुम्हारे लिए सब की व्यवस्था कर दी है, और मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ, अब तुम मुझे आदेश दो, मैं तीसरे आश्रम में आकर के और फिर संन्यास के लिए प्रस्तुत होऊंगा और भगवान का भजन करके जाऊंगा। एक पत्नी जो कात्यायनी थी उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, हमारे बेटे लोग हैं, गोधन है, अलंकार है, घर है, सब कुछ है, आप जाकर के भजन कीजिए और हम लोग यहीं पर आकर के भजन। दूसरी पत्नी जो थी मैत्री, उसने कहा आप जाना चाहते हैं, ठीक है कि तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे करके जाइए खूब खुशी के साथ, किंतु हमारा एक प्रश्न है उसको क्या? आपने हमको जो पुत्र दिया, धन संपत्ति दी, गोधन दिया, अलंकार दिए, इसे मैं सारा जीवन सुखी रह सकती हूँ या नहीं? ये सुनकर के बड़े खुश हुए, तुम ही एक ऐसी विदेशी महिला जो ऐसा प्रश्न हमसे कर रही है, दूसरी ने तो किया नहीं, इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान दूंगा, तुम इसके लिए योग्य पात्र है, क्वालिफाइड है। देखो धन से कोई सुखी नहीं हो सकता, परिजनों से कोई सुखी नहीं हो सकता, भवन से कोई सुखी नहीं होगा। हमारी जो विषयों की आसक्ति है, उसकी जो चाह है, सब कुछ मिलने पर भी हम नहीं सुखी हो सकते। क्यों? ये सब नश्वर वस्तु है। तुमको एक रहस्य की चीज बतलाता हूं, ये जगत में शुद्ध प्रेम नहीं है। हम गाय को पालन करते हैं, यदि गाय दूध नहीं देती हो और भविष्य में भी ये संभावना नहीं है कि उसका बच्चा होगा, दूध होगा, तो उस गाय को पालेंगे? हम गाय को पालते हैं अपने दूध पीने के लिए। यदि गाय बूढ़ी हो जाए, सूख जाए, उसके बच्चे न हो और पतली लंबी गोबर कर रही हो, उस गाय को रखेंगे? नहीं रखेंगे। हम आयरन चेस्ट मंगाते हैं, उसमें अपने सोने अलंकार इत्यादि रखते हैं। सोने के अलंकार को सुखी होने के लिए रखते हैं ना, अपने लिए? एक हम पेड़ लगाते हैं बगीचा, किस लिए बगीचा लगाते हैं? छाया मिलेगी, फल मिलेगा। जिसमें कांटे हैं, जिसमें फल नहीं आएंगे, उसको पेड़ का कोई नहीं लगाता। इसलिए माँ बाप अपने पुत्रों को स्नेह करती हैं, किस लिए? ये बड़ा हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हमको देखेगा। और बेटा माता पिता को कब तक प्यार करता है? जब तक कि शादी नहीं हो जाती। बहुत बिरले आदमी होते हैं जिनके लड़के वैसे होते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो अपने स्त्री और बच्चों के देख रेख में लग जाते हैं, वो घर में स्नेह नहीं जाता है। ये स्नेह कुछ स्वास्थ्य बता है। इसलिए जगत में जब विचार करके देखा जाता है तो जगत में विशुद्ध प्रेम नहीं है। किसी न कोई कारण होना चाहिए, और कारण समाप्त हो जाएगा बस प्रकृति टूट जाएगी। आज आप लोग देख रहे हैं भाजपा ना क्या एक हो, दोनों का मेल हो गया है ना। जो परस्पर गाली देते थे और क्या क्या करते थे, जिसका मुख देखना पाप था, ये काल के अनुसार में स्वार्थ बरतना चाहिए, होना था। ऐसे ही सभी चीजों को समझ लीजिए। इसलिए यहाँ कहते हैं सवई पुनसान परो धर्म हो जतो भक्ति का धर्म। परम पुरुष कौन है? कृष्ण भगवान। हम सबको देखते हैं, हमारे अंदर में है, हम उनको नहीं देखते, किंतु वो सर्वव्यापी हैं, बड़े दयालु हैं। हमारा सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं, वही नियमित रूप में सूर्य को ठीक समय पर उदित करते हैं। समुद्र में वैसे ही लहरियां आती हैं, ठीक समय पर आएगी ज्वार भाटा इत्यादि, सबको कंट्रोल वही करते हैं। ग्रह नक्षत्र कहीं टकराते नहीं है, देखिए घूम रहे हैं, सब प्रभु कर रहे हैं। हमारे जन्म इत्यादि का भी कंट्रोल वही कर रहे हैं। उनके प्रति अहेतु की भक्ति हो, भक्ति किसको कहते हैं? ये हमारे पूज्य हैं, मैं इनका सेवक हूं, हम इनकी सेवा। सेवा का नाम ही भजन होता है, भज धातु सेवाया। इसलिए परम पुरुष जो कृष्ण है, उनके प्रति हमारी भक्ति हो। कैसी? पहले धारावत अविच्छिन्न गति से हो, आज हो और कल नहीं हो, सवेरे कर लिया और फिर करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, अविच्छिन्न गति से। और कोई स्वार्थ न हो, बस कृष्ण के लिए हो और एकांतिक कृष्ण हो, इसको अनन्या भक्ति कहते हैं। ऐसे ये अहत की भगवान के चरणों में भक्ति। परीक्षित जी से करें, अभी तुम्हारा 7 दिन का समय है, अभी चित्त को भगवान में लगाओ। यदि शरीर से भी नहीं हो तो मन से करो। आदमी जो कुछ करता है शरीर से चलेगा 2 मील, 1 घंटे में 3 मील, 4 मील, 5 मील, और मन के द्वारा कितना चलेगा? जो कुछ मनुष्य कोई कर्म भी करता है तो मन में उसका संकल्प बना लेता है, ये हमको करना है, हमको एक घर बनाना है। जैसे यहाँ की ये सोसाइटी ने, वो उत्तरायण सोसाइटी ने पहले घर नहीं बना लिया, 10-5 आदमियों ने मिल करके कहा, भाई पहाड़ों के लोग आते हैं, उनको रहने की कोई सुविधा नहीं है, गरीब लोग होते हैं, वो अभी यहाँ पर फ्लैट लेकर के और ये जमीन खरीद करके ये इतना उनके लिए संभव, हम लोग कुछ मिल करके हम लोग कुछ ऐसा बनाए कि कुछ उनके रहने के लिए रिहायशी रूप में कुछ बनाए आवास, और उसमें बिजली का पन भी तरे न कोई, जो विरंग के संग करसम होई। अरे मनुष्य की बात क्या कहता है? ब्रह्मा और शंकर के समान भी ज्ञानी लोग हों, यहाँ पर ब्रह्मा और शंकर जी के लिए नहीं कहा गया, उनके समान दूसरे कोई यदि हो तो बिना गुरु के भव सागर को नहीं पार सकते। ये कष्टों से उनकी रिहाई नहीं है, छुट्टी नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। एक समय एक नदी के किनारे सामने अपराध स्थान में व्यास जी कुछ बैठे थे, कुछ खिन्न से थे। उसी समय में कुछ चिंता कर रहे हैं। उस समय चिंता करते करते देखा ये नारद जी वहां पर बैठे, हाथ में वीणा थी और नाम कर रहे थे। क्या नाम कर रहे थे? वो नाम सब समय राधिका रमण का नाम करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए
राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
जहाँ जाते हैं नारद जी, जहाँ जाते हैं बस यही गोविंद का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम सब समय गान करते हैं। माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती। नारद जी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने आदर करके उनको बैठने के लिए स्थान दिया। वो बैठे, कहा व्यास तू बड़ा दुखी दिखता है, कोई चिंता तुम्हारे अंदर में आ गई है, क्यों इतना दुखी है, क्यों चिंता कर रहा है? नहीं, यही तो मुझे मालूम नहीं है क्यों मैं चिंतित हूं। रोगी दुखी रहेगा ये नहीं बतला कि हमारे पास में क्या रोग है। यदि ऐसा कोई रोग हो गया, दिन पर दिन सूखता चला जा रहा है, हजम नहीं होता और कष्ट होता है, वो डॉक्टर के पास में जाएगा, डॉक्टर परीक्षा करेंगे ये क्या हुआ वो बतलाएंगे। तो मैं तो रोगी हूँ, मैं दुखी बतला नहीं सकता कि क्यों हमको दुख कष्ट हो रहा है, हम क्यों चिंतित हैं, आप बतलाइए। मैं जानता हूँ ये क्यों तुम दुखी, तुमने वेद शास्त्रों का, वेदों का विभाग किया चार में, ऋग्वेद सामवेद यजुर् अथर्वेद इत्यादि, इसको सरल रूप में शिक्षा देने के लिए तुमने पुराणों को बनाया, 18 पुराण, 18 ऊपर पुराण और 18 शाखा पुराण, 36 प्रकार के ये पुराण बनाए। फिर वेदों के उपनिषदों का सार भाग लेकर के वेदांत दर्शन नाम का ये ग्रंथ किया है, जिन्हें 550 सूत्र हैं, और मध्वाचार्य, रामानुज, शंकर इत्यादि जितने भी बड़े बड़े विद्वान भक्त लोग हैं सब ने उसकी व्याख्या की। वो आचार्य ने जो वेदांत शास्त्र का अनुशीलन नहीं किया और न पढ़ा, तो उन्होंने सब कुछ किया। महाभारत लिखा स्त्रियों के लिए और पुराणों को जो उसमें स्त्रियां भी सहज सरल रूप में पढ़ें, ऐसी कथा की अवतारणा की जो सत्य है। और दो भाइयों में लड़ाई लगी संपत्ति की राज्य के लिए, जब मैं इसका उत्तराधिकारी हूं तो मैं, और उसी बीच में अर्जुन को कृष्ण रथ पर बैठा कर वहां पर ले आए, उसमें गीता का उपदेश किया। यह महाभारत का ही अंश है। भीम ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी का इसने अपमान किया दुर्योधन ने और दुशासन ने, दुशासन इनका वस्त्र हरण कर रहा था और नंगी लेकर के उनको बैठाएगा दुर्योधन के जंगे के ऊपर, और जब दुर्योधन ताल ठोक रहा है यहां पर बैठाओ जल्दी से, और वो 7,000 हाथियों का बल लेकर के खींच रहा है, वो तो कृष्ण ने रक्षा की नहीं तो उसकी लज्जा जाती, वो तो एकदम शरणागत थी ना। ऐसी मनोरोचक सुंदर कथाएं उसमें भव्य, और उसमें भगवान ने उनकी रक्षा की। अब गई लाज, अब तो गिरधर गोपाल दूसरो मुझे कोई
सीखा,
गोविंद रास शरण
अब तो जीवन
है, बस प्रभु कहीं दूर नहीं थे आ गए। ऐसी सब कथाओं के माध्यम से गीता का उपदेश इत्यादि किया उन्होंने। महाभारत इस तरह से लिखा जिसमें सभी लोगों का अधिकार है, वेदों में हम लोगों का अधिकार नहीं, ब्राह्मण भी वेद नहीं जानते, वो गायत्री का मंत्र ही नहीं जानते। एक मुसलमान छोटा सा बच्चा होगा उसको भी कलमा पढ़ाएगा, यहां छोटा सा जरूर कलमा पढ़ाएगा। एक क्रिश्चियन का बच्चा है उसको अंततः शुक्रवार को वहां पर जाने का निर्देश देंगे, और बाइबल जरूर से पढ़ाएंगे। आज हिंदुओं की औनति इसीलिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण ही नहीं जानते हैं, न करते हैं, बहुत कम रेयर हैं, ब्राह्मण भी नहीं जानते, यहाँ तक उपनयन भी जो धारण करना चाहिए उनको नहीं आता। इस जाति को तो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, तो नहीं कब तक क्या हो जाना चाहिए। अभी तक हम लोग सो रहे हैं, अभी तक तो भारतवर्ष से पाकिस्तान को निकाल दिया, उधर में असम को निकाल दिया, मनो के देखते देखते लंका निकल गया, राजस्थान और पंजाब का भाग भी निकल गया ना, लाहौर इत्यादि हम लोगों के अंदर में था, वो सब निकल गया। अब कुछ दिनों के बाद में ये भी न जाने डिवाइड होगा न क्या होगा, उस समय में हिंदू लोग कहाँ भाग करके जाएंगे, है कोई स्थान, अभी से सोचना चाहिए। इसलिए गायत्री का मंत्र सब बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने भी करना चाहिए, गीता भागवत का नाम सुनना चाहिए, इसका सार क्या है, आत्म तत्व क्या है ये जानना चाहिए, हम लोगों को परस्पर प्रतिपूर्वक रहना चाहिए। हमारा तो धर्म इतना ऊंचा है कि मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई क्या जितने पशु पक्षी किसी पतंग है उसमें सभी में ब्रह्म है, जीवात्मा है, इतना ऊंचा, किंतु हम धीरे 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 भूलते जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं हो तो इतना राम राम कहना सिखाओ तो बच्चों को, गायत्री का मंत्र तो सिखाओ। आज हम समझते हैं कि ये जितने ब्राह्मण लोग यहाँ पर आए होंगे पहाड़ों से भी, उनसे मैं भी खड़ा कर दूं और पूछूं जैसे किसको किसको ये गायत्री रोज करता है, वो कहेंगे कि मुझको तो गायत्री हमने सुनाई नहीं या करते नहीं। क्या ये हिंदुत्व है? अरे साथ लुंगी पहन लो और कलमा पढ़ लो, मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? नहीं मुसलमान है, इसलिए इसलिए गायत्री हमको जाननी चाहिए। तो वो सिखला रहे हैं, देखो तुमने, माने व्यास जी को कारण, तुमने धर्म कर्म की बातें बहुत लिखी, वर्णाश्रम धर्म का तुमने ये सब लिखा, श्री का चरित्र लिखा तुमने, दधीचि का लिखा, हरिश्चंद्र की बातें लिखी, ये दान कैसा करना चाहिए, ये सब बातें बतलाई, किंतु तुमने पुराणों को लिख करके वेदों को लिख करके ये अभी तक नहीं बतलाया जो हमारा आराध्यतम कौन है। मुसलमान और क्रिश्चियन कहते हैं तुम लोगों का कोई एक ही आराध्य नहीं है, तुमका तो 1,035 करोड़ देवता तुम्हारे 35 प्रकार के हैं, 35 करोड़ तुम्हारे देवता, एक तुम्हारा नहीं है, हमारा तो अल्लाह खुदा एक है, हम लोगों का एक ही है, किंतु हम जानते नहीं, हमने भेद कर बैठा, हमारा भी उपास्य एक ही है, एक ही तत्व है, किंतु क्लास के अनुसार में हमारे अंदर में क्लास है, उनमें क्लास कोई नहीं है, हमारे अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 क्लास है, जो जैसा योग्य व्यक्ति है उसके लिए एक क्लास बनाए गए, किंतु आज समझने वाले कोई नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने ये नहीं कहा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण की आराधना कैसी होनी चाहिए और उनकी लीलाओं का तुमने वर्णन नहीं किया, विशेष करके तुमने ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति जो भक्ति स्वाभाविक है इसके प्रति तुमने कुछ भी नहीं किया। गोपियों ने सर्वोत्तम जो आराधना की कृष्ण की और उनका उनमें से राधिका का जो प्रेम है सर्वोच्च है, तुमने कहीं नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? तुमको पता नहीं था? एक बात करो, तुम भक्ति के योग के द्वारा चित्त को एकदम निर्मल करो, एकाग्र करो, कैसे होगा? भगवान का नाम करो और उनके अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, जैसा है वैसा ही हमको रियलाइज करा दो, जैसे गायत्री मंत्र है, सब तो नहीं बतलाऊंगा किंतु एक अंतिम पद बतला रहा हूं, प्रचोदया शब्द है, माने क्या? प्रचोदया, जैसे है प्रभु आप हैं हमारे हृदय में ऐसे उदित हो जाएं, भगवान तो सर्वांतर जानी हमारे हृदय में जैसे हैं उदित हो जाएंगे, ये प्रार्थना है। इस भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है, भगवान अपने आप उदित हो जाते हैं, हमारे समस्त मंत्रों में ऐसे ही नमः स्वाहा इत्यादि, स्वाहा माने क्या? स्व माने अपने को, हा माने अर्पित करना, मैं आपके चरणों में अपने को, ये सब मंत्रों के सार है। आजकल जो मंत्र देने वाले हैं उनको भी ये सब चीजें पता नहीं है, तो साधारण लोगों के पास उनको तो पैसा चाहिए, ये धर्म भी धर्म का भी उन्होंने ठीका उठा लिया और धर्म से विमुख रहे, हमारी जाति चली गई जहन्नम में। जगत में बहुत इन सब चीजों को जानने वाले, दूसरों को उद्बुद्ध करने वाले, प्रेरणा देने वाले, आज वो छोट कर्म का बंद हो गए। आज भागवत पाठ होता है सब जगह, सात दिन पाठ होगा, इसमें पहले से तय करेंगे हमको 5,000 रुपया 10,000 20,000 रुपया चाहिए तो हम भागवत कहेंगे। हम लोग इसके विरोधी हैं, हम कीर्तन करेंगे कहीं जाएंगे पहले पैसा ले सकते नहीं, तो फिर क्या रहा, कथाओं का सार इसी में चला गया। उसकी श्रद्धा होने से तो वो सर्वस्व अपना जीवन ही हमको अर्पित कर देगा, उसमें मांगने की जरूरत क्या है और तुमको लालसा करने की जरूरत क्या है। तुम ये देखो कि हम इनको भगवान की तरफ ले जा रहे हैं, इनका यथार्थ जीवन का मंगल करते हैं, ऐसी भावना हमारे अंदर में आएगी तब तो उस व्यक्ति का श्रोता का भी कल्याण होगा। परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने कितनी दक्षिणा दी, सात दिन तो कहा ना, और उनको परम पद में पहुंचा दिया, उनसे कितनी क्या लिया, वो देने लायक है क्या सुखदेव गोस्वामी को देने के लिए क्या है, आप ही लोग हमको क्या देंगे उस देने के लिए, आपके पास तो हमारे पास में एक श्रद्धा है, हर बात को छोड़ करके आए हैं, हम रोटी जा रहे हैं वो मिली जाएगी, कपड़े अपने आप मिल जाते, हमको क्या देंगे संसारी चीज, आप तो अपने ही खुद अभाव में पड़े हैं, बल्कि मैं आप लोगों को एक संपत्ति दूंगा जो आप जीवन भर सुखी रह सकते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज उनको व्यास जी को नारद जी बतला रहे हैं, देखो तुमने भगवान की कथा संपूर्ण रूप में नहीं कही, क्योंकि स्वयं भगवान है तुमने डिक्लेयर नहीं किया, तुमने कभी शिव तत्व को बड़ा बनाया, कभी ब्रह्मा जी को, कभी गणेश को, कभी दुर्गा को, कभी काली को, कभी संतोषी मैया इतनी नहीं निकल रही है, ये सब देवताओं को तुमने कहां कहां, किंतु सबके मूल में वही है, ये सब में भगवान की कुछ शक्ति है, ये लोग मिथ्या नहीं है, दुर्गा इत्यादि है, ये शास्त्र में प्रमाण है, इनको यथाजोग्य सम्मान देते हुए, किंतु कृष्ण ही सबसे उत्तम है, कृष्ण ही की शक्ति से ये सभी ऐसे कुछ दे सकते हैं, इसलिए इनको यथार्थ सम्मान देना चाहिए। एक चीटी को भी जब हम सम्मान देते हैं तो इनको क्यों नहीं देंगे, इनको सम्मान देंगे। घर में पति और पत्नी है, किंतु ससुर को भी तो सम्मान मिलना चाहिए, जेठ को भी सम्मान मिलना चाहिए जो जैसा सम्मान का पात्र है, उसी तरह से कृष्ण ही हमारे परमाराध्य हैं, एक एक चांस कला है, और ये कैसे हैं, सर्वंतर्यामी हैं, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम, ये कृष्ण सब कारणों के कारण है, इसको समझना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना, जितने अवतार हैं वो प्रभु के अवतार हैं, सभी अवतार एक ही तत्व हैं, केवल लीला की दृष्टि से ऐसे 10-20 दिखते हैं किंतु है नहीं, जैसे एक समझिए चंद्र एक है, दो तो नहीं किंतु प्रतिपदा का चांद, द्वितीया का चांद, तृतीया का चांद, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और पूर्णिमा का चांद, ऐसा क्यों होता है, चांद एक ही है और सब समय वो पूर्ण ही है, किंतु सूर्य की रोशनी से जब पूर्ण रोशनी पड़ती है सूर्य की उस पर तो उसको पूर्णिमा कहते हैं, जब एंगल ऑफ विजन हो जाता है जिस दृष्टिकोण से हमें उनको देखते हैं, अभी पृथ्वी पर यहां है, अभी सूर्य यहां से नहीं दिखाई पड़ता है, चंद्र पर उसकी अभी अभी ये कृष्ण कृष्ण पक्ष है, ये अंधेरी रात शुक्ल पक्ष, किंतु अभी अभी चंद्र
बादल छाया हुआ
है ना, अब इसकी सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है, अब कितनी पड़ रही है, पूरी है पूर्णिमा तो है नहीं,
दो दिन है पूर्णिमा,
अब दो एक दिन में पूर्णिमा आने वाली है, अब ये बढ़ती जाएगी, पृथ्वी की छाया से पृथ्वी बीच में पड़ रही है, एक तरफ में चंद्र एक तरफ में सूर्य, इसलिए इसकी छाया इतनी दिख रही है, तब कहेंगे प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, चंद्र दो नहीं है, अभी हम आकाश में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से सूर्य और चंद्र दोनों को देख सकते हैं, वहां देखेंगे पूर्णिमा ही पूर्णिमा, ये सब एंगल ऑफ विजन का ही है, दृष्टि का है। उसी तरह से कृष्ण ही एक परम तत्व है, जिनको जितनी भक्ति है उसी के अनुसार उनको कोई राम कोई परशुराम कोई वामन कोई कल्कि कोई कुछ रूप में सकती, किंतु है एक ही वस्तु, और देवता क्या है, भगवान ने कुछ शक्ति संचरित कर दी है, वो शक्ति से उसमें कुछ पावर आ गया है और उसके द्वार से जगत का ये सब काम कर रहे हैं, इस तरह से सूर्य में उन्होंने दी है शक्ति, सभी सूर्य वरण्यम, सूर्य के भी वरण्य है, ऐसे ये प्रभु हैं, कृष्ण ही एकमात्र प्रभु हैं, हम उनके जीव हैं, कोई बद्ध है कोई मुक्त है, बद्ध जी अभी हम संसार में पड़े हुए हैं, और कुछ ये है जो नित्य उनकी सेवा करने की। हमको भी यहाँ से जाना है, कैसे जाएंगे? भक्ति के माध्यम से जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा तुम देखो ध्यान लगाओ, प्रभु को सरेंडर कर दो, आत्म शरणागति कर दो और देखेगा कृष्ण को पूर्ण रूप से। भक्ति योगेन मनसी सम्यक पंडिते अमले अपत्यपुर संपूर्ण मायांश जदा पाश्याम। भागवत ने इसको सुंदर रूप से वर्णन किया। भक्ति योग के द्वारा चित्त को उन्होंने आकृष्ट कर दिया और एकांत में करके देखा, क्या कृष्ण को देखा। उनके बाल्यकाल से लेकर के अंतर ध्यान तक की जितनी भी द्वारका तक लीलाएं हैं सबको उन्होंने एक एक करके देखा। जैसे कि हम सिनेमा देखते हैं, एक एक रील एक एक ऐसे चलती चली जाती है, इन कंटिन्यू से सब लीलाओं को उन्होंने देखा और देखा जो जो भगवान का भजन नहीं करता है वो बद्ध हो रहा है इस संसार, और जो भजन करते हैं ऊपर निकलेगा। इस तरह से उन्होंने पूरी तैयार। इसके बाद उन्होंने इस चीज को भागवत में लिखा, समाधि भाषा। वो क्या है? जस्य अवैष्टियमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपया। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए जो कुछ समाधि में उन्होंने देखा उसको हमारे सामने देखने के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने समाधि भाषा को रखा। आप लोग न्यूटन का नाम जानते होंगे, किस लिए प्रसिद्ध है? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आविष्कार किया। उसके पहले नहीं था ना कि था? क्या आविष्कार किया उन्होंने? उसके पहले हमारे शास्त्रों में ऐसा रहा हजारों बार, संकर्षण माने आकर्षण। वो पहले लाखों कोटि न्यूटन के पहले ये सब थ्योरिया थी। आम गिरता है ऊपर से नीचे, क्यों पृथ्वी पर गिरा? क्योंकि आकर्षण कर लिया नीचे। आग जला उसका फ्लेम किधर जाता है?
ऊपर।
आका फ्लेम गुब्बारा हवा भर करके छोड़ दो किधर जाएगा? क्यों ऊपर जाएगा? उसको पृथ्वी कहीं नहीं खींच लेती,